लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र आत्मा पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। दिल एक्सित नोस के तीसरे अध्याय का शीर्षक है यह हृदय है जिसने हमें गहराई से प्रेम किया है। हमने इसकी चर्चा करते हुए अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में त्रियामी प्रेम की चर्चा की और कहा कि यीशु के हृदय में प्रवेश करते हुए हम अपने को एक मानव हृदय से प्रेम किए जाने का अनुभव करते हैं जो स्नेह और संवेदनाओं से भरा है, जैसे कि हम स्वयं अपने में अनुभव करते हैं। यीशु की मानवीय चाह हमें स्वतंत्र रूप से प्रेम करने का चुनाव करती है और उस आध्यात्मिक प्रेम को हम कृपा और करुणा से सराबोर पाते हैं। जब हम उनके हृदय की गहराई में गोते लगाते हैं तो हम अपने को दिव्य पुत्र की भांति अनंत प्रेम की महिमा से वशीभूत होता पाते हैं जो हमें उनके मानवीय प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता है। यह विशेष रूप से हमारे लिए उनका मानवीय प्रेम है और इससे कुछ अलग नहीं, जिसका मिलन हमें उनके दिव्य प्रेम में होता है जिसे हम अलौकिक को लौकिक में पाते हैं। श्रोताओं, यीशु के हृदय की आराधना जो हमें यीशु के संग एक होने को आकर्षित करता है अपने में स्पष्ट रूप से ख्रीस्त शास्त्र की प्रकृति है। हम इसे इब्रानियों के नाम पत्र में पाते हैं जो हमें इस बात का आह्वान करता है हम यीशु की ओर अपनी निगाहें गड़ाए रखते हुए अपने सामने रखी गई एक दौड़ में सुदृढ़ बने रहें। वहीं हमें इस बात को अनुभव करने की जरूरत है कि यीशु हमें अपने को पिता की ओर ले जाने वाले एक मार्ग स्वरूप घोषित करते हैं। मैं एक मार्ग हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। यीशु हमें पिता के पास ले चलने की चाह रखते हैं। यही कारण है कि शुरू से कलीसिया की शिक्षा यीशु से खत्म नहीं होती है बल्कि यह पिता से खत्म होती है। स्रोत और पूर्णता के रूप में यह पिता है जिनकी महिमा हमें करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए यदि हम एफेसियों के नाम पत्र की ओर आएं, तो हम इस बात को स्पष्ट रूप में पाएंगे कि कैसे हमारी आराधना पिता की ओर अभिमुख है। मैं पिता के सामने नतमस्तक होता हूँ। केवल एक ईश्वर जो सबके पिता है, जो सारी चीजों में और सारी चीजों के ऊपर है। आप हर समय ईश्वर पिता का हर चीज के लिए धन्यवाद करें। यह पिता है जिनमें हम सभी बने रहते हैं। इस अर्थ में संत पापा संत योहन पौलुस द्वितीय कहते हैं, संपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन पिता के निवास की ओर एक तीर्थ यात्रा की भांति है। लोहू गुआह होने के मार्ग में हम इसे अंताकिया के शहीद संत इग्नासियस के जीवन में एक अनुभव स्वरूप पाते हैं। दुनियावी चीजों के संबंध में मेरे जीवन में कोई चमक नहीं रह गई है, लेकिन केवल संजीवन जल की एक आंतरिक फुसफुसाहट जो मुझ में कहती है, पिता के पास चले आओ। श्रोताओं, पिता सारी चीजों के पहले यीशु ख्रिस्त के पिता हैं। धन्य है हमारे ईश्वर और यीशु ख्रिस्त के पिता, वे हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के पिता हैं। पिता की महिमा, जब पुत्र मानव बनते हैं तो मानव के रूप में उनकी सारी आशाएं और आकांक्षाएं अपने पिता की ओर अग्रसर होती हैं। यदि हम इस बात पर चिंतन करें कि कैसे यीशु ख्रिस्त ने अपने पिता के बारे में बातें कहीं, तो हम उनके मानवीय हृदय में व्याप्त प्रेम और स्नेह को समझ सकते हैं। वे अपने पिता के प्रति पूर्ण रूपेण निरंतर समर्पण को व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में यीशु का जीवन पिता के पास आने की उनकी मानवीय हृदय की निरंतर पुकार के प्रत्युत्तर की एक यात्रा है। हम आरामाइक में यीशु के द्वारा पिता को पुकारे जाने वाले शब्द अब्बा से वाकिफ हैं। यह एक अंतरंग और परिचित शब्द जिससे कुछ लोग अपने को क्षुब्ध होता पाते हैं। वे कैसे इस शब्द के द्वारा अपने पिता को अपने घोर दुख की घड़ी में पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता, तुझमें सारी चीजें संभव हैं, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हो जाए, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु यह अच्छी तरह से जानते थे कि वे अपने पिता के द्वारा सदैव प्रेम किए जाते हैं। तूने संसार की सृष्टि के पहले से ही मुझे प्रेम किया। अपने मानवीय हृदय से वे पिता की इस बात को सुनते हुए आनंदित होते हैं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्रोताओं, चारों सुसमाचार में हम इस बात को पाते हैं कि दिव्य पुत्र सदैव पिता के हृदय के निकट थे। संत इरेनियस हमें इस भांति इस बात को घोषित करते हैं कि ईश्वर का पुत्र शुरू से ही पिता के साथ था। ओरिजिन अपनी ओर से इस बात को घोषित करते हुए कहते हैं कि पुत्र पिता की बातों को गहराई से निरंतर चिंतन करने में लगे रहते हैं। अपने शरीर धारण में पुत्र सारी रात अपने पिता के संग पर्वत की ऊंचाई में वार्ता करते रहते हैं। वे हमें बतलाते हैं, मैं अपने पिता के निवास में होऊंगा। हम यीशु को अपने पिता की प्रशंसा करते हुए पाते हैं। ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु ख्रिस्त के अंतिम शब्द जहाँ हम उनके पूर्ण विश्वास को पाते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। श्रोताओं, इस भांति संत पापा फ्रांसिस पवित्र आत्मा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं, जिसकी अग्नि यीशु ख्रिस्त के हृदय में भरी होती है। जैसे कि संत पापा योहान पॉलस द्वितीय ने एक बार कहा, ख्रिस्त का हृदय पवित्र आत्मा की उत्कृष्ट कृति है। यह अतीत की एक घटना से बढ़कर है, क्योंकि यह अब भी ख्रिस्त के हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम जीवित है, जिसे यीशु ने अपनी प्रेरिताई की प्रेरणा का श्रेय दिया और जिसके भेजे जाने की प्रतिज्ञा उन्होंने अंतिम व्यारी में की थी। यह पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु के छेदित बगल की समृद्धि को समझने में मदद करते हैं, जहां से कलिसिया की उत्पत्ति हुई है। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि केवल पवित्र आत्मा हमारे लिए किसी व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता को खोल सकते हैं, जिसे हम यीशु के हृदय में पाते हैं। यह केवल वे हैं जो हमारे मानवीय हृदयों को उस परिपूर्णता से कदम दर कदम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
हे पावन आत्मा सुन, गाते हैं मिलके हम तेरा गान, आए हैं हम आशा लेके वरदान पाने तेरा प्रभु। हे पावन आत्मा सुन। ज्ञान पावनता में बढ़ते रहे, आपसी प्रेम से मिलकर रहे, ज्ञान पावनता में बढ़ते रहे, आपसी प्रेम से मिलकर रहे, अपने
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा है कि पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर है और उनका निर्धारित इलाज जारी है। सोमवार शाम को पत्रकारों को भेजे गए संदेश में वैटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर नवीनतम जानकारी साझा की, जिन्हें शुक्रवार को ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि पोप फ्रांसिस को बुखार नहीं है और वे निर्धारित उपचार ले रहे हैं। सोमवार को प्रेस कार्यालय ने कहा, आज सुबह वे पवित्र परम प्रसाद ग्रहण किए और कुछ काम किए एवं कुछ पढ़े। विज्ञप्ति में यह भी बतलाया गया है कि पोप फ्रांसिस इन दिनों प्राप्त हुए स्नेह एवं सामीप्य के असंख्य संदेशों से बहुत प्रभावित हैं। वे विशेषकर उन लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। उनके चित्रों और शुभकामना भरे संदेशों के माध्यम से व्यक्त किए गए स्नेह एवं प्रेम के लिए वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे भी उनके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले सोमवार को प्रेस कार्यालय ने पुष्टि दी थी कि पोप फ्रांसिस के इस सप्ताह के आम दर्शन समारोह को रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को वैटिकन प्रेस कार्यालय ने पुनः एक बार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बतलाया कि पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अगले शनिवार 22 फरवरी को उपयाचकों के लिए आयोजित जयंती आम दर्शन समारोह को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं रविवार 23 फरवरी को संत पेत्रुस महागिरजा घर में जयंती मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान सुबह 9 बजे वैटिकन सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो प्रीफेक्ट कार्डिनल रिनो फिजिकेल्ला करेंगे। पोप फ्रांसिस ने उत्तरी इटली के त्रिवेनेतो ईश शास्त्र संकाय की 20वीं वर्षगांठ मनाने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे दुनिया में ख्रिस्त के संदेश का प्रचार करें, वास्तविक परंपरा के प्रति वफादार रहें, लेकिन समय के संकेतों को भी पढ़ने के लिए खुले रहें। पोप फ्रांसिस ने शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे ख्रिस्त के संदेश एवं कलीसिया के मिशन को समकालीन समय में ईमानदारी और प्रभावी ढंग से प्रसारित करें। संत पापा ने अपनी ये बातें त्रिवेनेतो ईश शास्त्र संकाय की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रेषित एक पत्र में कही है। 28 जनवरी को पोप द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को संस्था के रेक्टर फादर मौरिसियो जिरोलामी को भेजा गया। संस्था की स्थापना 2005 में हुई है। अपने पत्र में संत पापा ने उल्लेख किया है कि संकाय की 20वीं वर्षगांठ उन्हें इन वर्षों में किए गए अच्छे कार्यों, विशेषकर क्षेत्र की युवा पीढ़ियों के लाभ के लिए प्रभु के प्रति धन्यवाद समारोह में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा, मैं पूरे अकादमिक परिवार को कलीसिया के मिशन के साथ अपने सहयोग में दृढ़ रहने, दुनिया में मसीह के संदेश को फैलाने, वास्तविक परंपरा के प्रति वफादार रहने, लेकिन समय के संकेतों को पढ़ने हेतु खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। पोप ने समझाया कि इसका मतलब समकालीन मनुष्य तक सुसमाचार की सच्चाई को प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए साहसपूर्वक नई चुनौतियों का सामना करना है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोप ने संकट से आह्वान किया कि न केवल ईश शास्त्र के अध्ययन और गहनता के माध्यम से बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के ख्रिस्त साक्ष्य के माध्यम से भी प्रशिक्षण का यह महत्वपूर्ण स्थान आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि शिक्षक खासकर युवाओं को सत्य, अच्छाई और सुंदरता के आधार पर खुद को महसूस करने में मदद करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ संत पापा फ्रांसिस ने उनके प्रयासों पर कुंवारी मरियम की सुरक्षा का आह्वान किया तथा अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। निवानो शांति फाउंडेशन ने लैंगिक समानता आंदोलन मुसावा को 42वें निवानो शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। यह पुरस्कार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता एवं मुस्लिम पृष्ठभूमि में अंतर्धार्मिक समाज और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देने के इसके प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। निवानो शांति पुरस्कार समिति द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुसावा अरबी में जिसका अर्थ समानता है, को मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए अंतर्धार्मिक संवाद में महिलाओं के नेतृत्व के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु चुना गया है, जो प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के सिद्धांतों के अनुरूप है। 2009 में स्थापित मुसावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार स्थिति के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। अपनी स्थापना के बाद से यह आंदोलन एक विशाल नेटवर्क में विकसित हो गया है, जो एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और वैश्विक उत्तर के क्षेत्रों सहित 40 से अधिक देशों में फैला हुआ है। यह संगठन महिला अधिकारों के लिए सकारात्मक सुधारों को बढ़ावा देते हुए कानूनों और प्रथाओं में निहित लैंगिक पूर्वग्रहों को चुनौती देने के लिए अधिवक्ताओं, विद्वानों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाता है। बौद्ध जापानी फाउंडेशन के संस्थापक निक्यो निवानो के सम्मान में नामित निवानो शांति पुरस्कार का उद्देश्य उन लोगों को पहचानना एवं प्रोत्साहित करना है, जो अंतर्धार्मिक सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और वैश्विक शांति को बढ़ावा देते हैं। 42वां पुरस्कार समारोह 14 मई को जापान के टोक्यो में होने वाला है। पुरस्कार प्रमाण पत्र के अलावा मुसावा को एक पदक और 20 मिलियन येन का नगद पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता को रोकने के निर्णय ने मानवीय संगठनों में हलचल मचा दी है, जिससे हजारों कमजोर शरणार्थी संकटपूर्ण परिस्थितियों में फंस गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित संगठनों में जेसुइट रेफ्यूजी सर्विस भी शामिल है, जो दुनिया भर में विस्थापित लोगों को सहायता प्रदान करती है। आज एक समूह से सम्मान वापस लेने से कल हम सभी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यह बात जेसुइट रेफ्यूजी सर्विस के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक ब्रदर माइकल स्कोप ने वैटिकन रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में कही है। वे नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के बाद अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता निधि के अचानक एवं तत्काल बंद करने के निर्णय पर टिप्पणी कर रहे थे। अमेरिकी सरकार द्वारा सभी विदेशी सहायता राशि को बंद करने के निर्णय को बहुत अचानक व्यवधान बतलाते हुए स्कोप ने कहा कि इससे चाड, इथोपिया, इराक, दक्षिण सूडान सहित 9 देशों में कमजोर लोगों के लिए परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।